फिर इसके बाद आप देखिए कि अल्लाह ताला आप वो मंजर दिखाते हैं। मैंने लास्ट टाइम आपको कहा था कि अभी हम इस पे ज्यादा बात नहीं करते क्योंकि ये बात दोबारा आएगी, तो वो मुकाम आ गया जहां हम विजुअलाइज कर सकते हैं गजवे बदर को और उसके मैदान को। कैसे? आयत 42, इज़न तुम, जब थे तुम, साथ साथ जमायर लिखते जाइए। अंतुम से मुराद नबी सल्लम और सहाबा कराम, जमा की जमीर है। जब तुम सारे थे किधर? बिल औदवत दुनिया, करीब के किनारे। किसका करीब था? लिख लीजिए मदीना का। जब मुसलमान वादिय बदर में मदीना से करीब वाले इलाके में थे। वहुम, और वो कौन? अबू जहल का लश्कर। बिल उदवतिल कुस्वा, दूर के किनारे पे थे। यहाँ लफ्ज देखिए उदवा, उदयन की जमा है। उदयन ऐन दालिया है, उदयन की जमा उदवा, और उससे आगे ये बात आ गई। किनारे सिमत और टीले को कहते हैं। अद-दुनिया दनूब से है, मदीना के करीब का किनारा। कुस्वा क्या है? दूर की जगह। इसी से लफ्ज मस्जिद अक्सा है। सुभान अल्लज़ी असरा बि अब्दिही मिनल मस्जिद अल हरामी इलल मस्जिद अल अक्सा। तो अक्सा दूर की मस्जिद, क्योंकि वो मदीना से दूर थी। आज भी ये टीले मौजूद हैं, अल्लाह ताला ने ले जाकर दिखा भी दिए। और ये सारी चीजें हमने वहां खड़े होकर देखी कि किस तरह कुर्बत थी, किस तरफ दूर थी। वादी बदर दोनों तरफ से तंग है, जबकि दरमियान में एक मैदान है। बिल्कुल आप फील करें, मैंने जाके देख के ये चीज हैरान होगी, कैसे लगता है कि प्री प्लान्ड है पूरी चारों तरफ से। ऐसे लगता है कि उस गोल से मैदान को चारों तरफ से अल्लाह ताला ने पहाड़ों से सिक्योर कर दिया। एक तंग किनारा शिमाल की तरफ है, जहां से शाम की तरफ जाने का रास्ता निकलता है, और दूसरा किनारा जनूब की तरफ से, जहां से मक्का को जाते हैं। यानी आप ये समझे कि नॉर्थ और साउथ, बस ऐसे एक रास्ता है। इधर चले जाएंगे तो सीरिया आ जाएगा, इधर चले जाएंगे तो मक्का आ जाएगा। एक रास्ता मशरिक की जानेब गुजरता है छोटा सा, जहां से गुजरते जाए तो मदीना आ जाता है। बस आप इतना सा समझ लें। पुराने जमाने में हाजियों के काफले वादिये बदर से गुजरते थे। अब अगर आप नई मोटरवे देखें जिसको तरीक उल हिजरा कहते हैं, और मैं लफ्जों में नहीं बयान कर सकती कि जब हम मक्का से मदीना जाते हुए इस पे थे, रोड पे नाम आता है बार बार तरीक उल हिजरा, तो मैं पूरा वक्त नबी सल्लम की हिजरत को सोचती रही, जितनी दफा शौरी तौर पे सोच सकी। मैंने कहा आज हम भी उसी रास्ते पे जाए, लंबा रोड है। बल्कि लोगों ने जो हमारे साथ, उन्होंने बताया कि मक्का से मदीना जाने का और भी रास्ता हो सकता था, लेकिन इट्स कंपेरेटिवली लॉन्गर, लेकिन सऊदी हुकूमत ने उसी पे बनाया ये सड़क जिस पे अल्लाह के नबी सल्लम आए थे। लेकिन बदर से जनूब की तरफ कोई बीच से गुजरेंगे ना, तो फिर ये रास्ता नहीं आता। यानी बहरहाल ये एक खास ट्रैक था। अल्लाह सुबहाना ताला ने एक ऐसी तदबीर की कि अल्लाह के नबी सल्लम का लश्कर जो था वो वादिये बदर में पहुंच गया, और वहां पानी का एक कुआं था। जब आप वहां पहुंचे तो आपने एक जगह पड़ाव डाला, शुरू में डाल दिया। सहाबा में से एक सहाबी ने कहा, अल्लाह के नबी मैं कुछ मशवरा दूं? कहा दीजिए। कहा कि अगर आप ये पड़ाव इधर की बजाय थोड़ा सा आगे जाके डालें स्टॉप ओवर, और जो आपका यहाँ रुकना है, कुआं तो आगे है तो दुश्मन उस कुएं का पानी ले लेगा, लेकिन आप अगर थोड़ा आगे जाएंगे तो कुआं आपके पास होगा। और आप कहते कि उस दौर में सर्वाइवल पानी पे थी। अल्लाह के नबी को ये मशवरा इतना अच्छा लगा। आप देखिए काम सहाबी का मशवरा, उनका नाम भी नहीं कोई इतना मारूफ लोगों के लिए, लेकिन आपने उनके कहने पे वहां से उठ के आगे गए। अब क्या हुआ? पानी पे मुसलमानों का होल्ड हो गया। अब देखिए ना, मैदान जंग में बाहर खड़े हैं तो वहां कोई टैप वाटर तो नहीं होते थे, फाउंटेन्स तो नहीं थे, तो जिसके पास पानी होता था वही जीता था। तो इस तरह से अल्लाह के नबी सल्लम उस कुएं के पास पड़ाव डालते थे। वर रुक बुअस वाला मिनकुम, और काफला तुमसे नीचे था। कौन सा काफला? रुक बुअस वाला मिनकुम से मुराद अबू सुफियान का काफला है। असल काफला जिसकी वजह से ये सारी जंग हुई, वो नीचे साहिल समंदर की तरफ से गुजर रहा था। यानी अबू सुफियान ने रूट बदल दिया था, जद्दा के रास्ते आ गया। अब अगर इन बातों को आप ज्यादा बोझल ना समझें, तो आपको पता है कि नॉर्मली तो हम क्या करते हैं, जद्दा से मक्का जाते हैं, मक्का से फिर मदीना जाते हैं। हालांकि अगर आप जद्दा से मदीना जाए ना, तो वो रास्ता शॉर्ट पड़ता है। तो जैसा कि अल्लाह के नबी ने हिजरत के रास्तों में ये सफर तय किया था कि आप गारे सौर की तरफ आए और जद्दा के रास्ते निकले, तो काफले ने भी वही रास्ता लेके मदीना को बाईपास कर दिया। यानी वो टकराव नहीं हो सका जिसकी उम्मीद थी। लिहाजा वो बिल्कुल वहां से निकले। बदर के पहाड़ी सिलसिले से आगे जो इलाका है ना उसको तहामा कहते हैं, ये साहिल समंदर यानी बिल्कुल जद्दा और उसके अराउंड की जगह है। तो काफिला उस वक्त उस मैदान की आखिरी हदूद पर समंदर के करीब था, इसलिए अल्लाह ताला कहते हैं वो चले गए। अब वो तो निकल गया, अब आगे जरा मेरे और आपके सीखने की बातें हैं। वलौ तवाअतुम, बड़ा मुश्किल है ये लफ्ज, वलौ तवाअतुम, और अगर तुम आपस में मियाद ठहरा कर निकलते तो क्या हो जाता, लख्तलफ्तुम फिल मियाद, तो वक्ते मुकर्रर पर पहुंचने में तुम जरूर मुख्तलिफ हो जाते। बड़ी खूबसूरत बात है। देखिए ग़ज़वा बदर जो थी ना ये अरेंज्ड जंग नहीं थी और अनाउंस जंग नहीं थी और एक्सपेक्टेड जंग नहीं थी। सहाबा को अल्लाह के नबी ने बस एक छोटी सी कॉल दी थी कि काफिला गुजर रहा तो हम रास्ता रोकने की कोशिश करेंगे ताकि अपना माल लें। सिंपल टास्क था। आप भी खुद सोचें ना, आपसे कहा जाए कि चलिए उठते हैं जरा चलते हैं हम जाके एजडा से कुछ ले आए, 10 लोग चल पड़ेंगे कि चलो हो सकता है वॉकर की चले जाएंगे। पता चले कि एजडा पे गए और वहां कुछ भी बट रहा था और हम सबको भी मिल जाएगा और चलो कुछ नहीं तो स्कूल की मदद कर देंगे। पता क्या चला कि यहां से निकले एजडा की नियत से और हम स्ट्रक हो गए ईस्ट लंदन के रास्ते में जो 1 घंटे दूर है, और वहां एक बहुत ही जबरदस्त किस्म का क्राउड आ गया। मुश्किल होता आपको यहाँ से ही कह दिया जाए कि चलिए चलते हैं, यहाँ तक कहेंगे चले और चलते हैं ईस्ट लंदन तक, कितने जाएंगे ये आया। अगर पहले से पता होता कि गजवे बदर में काफले से नहीं अबू जहल के लश्कर से सामना होना है तो इख्तलाफ तो घर से ही पड़ जाने थे, मैं नहीं जा सकता, आई कैंट, मेरे लिए इट्स वेरी हार्ड, बहुत मुश्किल है। याद रखिए बास दफा अल्लाह वो हालात पैदा कर देता है जिसमें हमारी आजमाइश मकसूद होती है, कुछ मुश्किल नहीं होता, हालात सारे ठीक होने होते हैं लेकिन अल्लाह करवा देता है। ये अल्लाह की तरफ से कुछ लोगों को नेमत मिलनी होती है जो हमारी जिंदगी में मुश्किलात आती हैं। यहाँ मियाद का लफ्ज भी काबिले गौर है, मुकर्रर वक्त और मुकर्रर जगह, यानी जगह मुकर्रर करने में या वक्त मुकर्रर करने में इख्तलाफ होता। और यहाँ जो तवातुम है ना ये वादे वाला ही लफ्ज है, वाइंदाल, वादा कहते हैं उम्मीद दिलाना, किसी को जब हम वादा कर लेते हैं ना तो उम्मीद दिला देते हैं। एक दूसरे से किया हुआ वादा यानी जंग लड़ने का, अगर ये पहले होता, अल्लाह ताला यहाँ ये बता रहे हैं कि ये सब कुछ हंगामी हालात में हुआ तो तुम कर गए, और ना होता पहले से तैयारियां करते रहते तो कुछ ना होता। बिलीव मी, जिंदगी गुजारने का एक बेहतरीन असूल है इस जुमले में। बास दफा हम महीनों की तैयारी के बाद कोई काम करते हैं, कुछ नहीं होता, रिजल्ट्स अच्छे नहीं निकलते, एन वक्त ऐसी भगदड़ मचती है कि फिर हम आंसुओं से रोते हैं कि मैं तो 6 माह से इस शादी की तैयारियों में थी, कोई एक गड़बड़ हो गई। और बाज़ औक़ात अल्लाह के वादों पे यकीन करके आप निकलते हैं, आप कहते हैं जो होगा कर देंगे, मुझसे 6 महीने की तैयारियां नहीं होती, वक्त पे हालात के मुताबिक जो मामला होगा मैं करती जाऊंगी करवाते जाऊंगी। वो शादी, वो फंक्शन, वो पार्टी ज़्यादा खूबसूरत होती है। इसमें मेरे और आपके सीखने की बहुत बड़ी बात है, अल्लाह ताला बंदे को तोड़ता है, उसके अंदर इंसान अना को इस तरह मैश करता है जैसे आप मैश पोटैटो बनाते हुए आलूओं को मैश कर देते हैं। हमारे अंदर कहीं अकड़ होती है, आई एम वेल ऑर्गेनाइजर, आई एम द बेस्ट पर्सन, मैं बहुत अच्छा काम करती हूँ, मैं पहले से प्लान्ड हूँ दिस। यहाँ एक जुमला लिखे, बास दफ़ा प्लानिंग की वजह से बहुत सारे काम रह जाते हैं। मैंने इस पर एक आज की बात दिया हुआ है कहीं, मुझे अब मेरे दिमाग में घूम रहा है कि ज़रूरी नहीं कि हमेशा काम बहुत प्लानिंगों के साथ ही हों, बास दफ़ा काम हालात के धारे पे गो विद द फ्लो पे चला दे। अल्लाह ऐन हालात में कुछ गड़बड़े पैदा करके कहता है अब सुनाओ किधर गई तैयारियां, किधर गए आपके वो बड़े बड़े तमगे और अपने आप को बहुत बड़ा बड़ा समझना। अल्लाह सुबहान ताला खिलाफे तवक्कु वाकयात के लिए तैयार करता है। यहाँ आप चंद बातें नोट कर लीजिए, फायदा होगा, जो इस इतने से जुमले से हम सीख सकते हैं। नंबर एक, खिलाफे तवक्कु वाकयात भी दिन में आ सकते हैं। आप प्लानिंग करते हैं, आज का दिन ले लीजिए, आप बच्चों के कोर्स कर रहे हैं, दी अटमोस्ट बेस्ट कोशिश भी करेंगे ना, एन वक्त पे कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगा, और आते हैं वो चीज़ें जो आम दिनों में अवेलेबल होती हैं वो आज अवेलेबल नहीं होंगी, ये तो होगा क्योंकि अल्लाह आपको मुझे देखना चाहता है। दूसरी बात इधर से पता चलती है कि हालात के बिगड़ते ही इख्तलाफात शुरू हो जाते हैं, फख्तलफ्तु। फिर तीसरी चीज इससे क्या पता चलती है कि अपने आप को पूरे का पूरा अल्लाह के हवाले करना ही अल्लाह की मदद को बुलाने का जरिया है। मैं कुछ नहीं कर सकती, अल्लाह मैं है ही नहीं, तोड़ मोड़ के मुझे गम की तरह जिधर मर्जी फेर दे, सब कुछ तेरे हाथ में, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला। और बिलीव मी, बाज़ औक़ात ऐसे हालात आते हैं, कई दफा ऐसे हालात जिंदगी में आ जाते हैं, कामों में, दुनिया के, दीन के, कोई ऐसा मसला उठ जाता है, कोई कैसी गलत फहमी हो जाती है, इतने प्यारे काम करने वाले साथियों को ऐसी गलत फहमियाँ हो जाती है कि मैं अपनी बात आपको बताती हूँ, बहुत कम होता है ऐसा, अल्लाह बचा के रखे। लेकिन इंसान है ना, एक ईमेल आती है फलां जगह वो फलां बहुत अच्छा काम कर करा रहे थे, ये अब आप पढ़ लीजिए मैसेज। अब मैं जब मैसेज पढ़ती हूँ ना, बिलीव मी, जहाँ मुझे कुछ ना समझ आए ना तो मैं उसको बंद कर देती हूँ। क्या जवाब दूँ इनको, दिल तड़प के कचरा कचरा हो जाता है। अल्लाह इतने प्यारे साथी को इतना बड़ा गलत फहमी हो गई, ऐसा हुआ, कोई पूछता है कुछ कभी कुछ, मैं फिर उनको कहती हूँ अल्लाह से पूछे, मैं भी मदद मांगती हूँ, फिर ज़ाहिर मदद तो करनी होती है। लेकिन आप इस चीज़ से ये सीखें, दीन का काम करते करते इतने एडवर्स हालात आ जाते हैं आप सोचते नहीं। सिर्फ इसमें से वाक्य से अगर आप अपनी नज़रें हटा लेना, तो इस पूरे वीक में मैंने दो इसकी बहुत बड़ी निशानियाँ देखी। वो कहते हैं ना कि फाता बिरु या उलिल अलबाब, अकल वालों के लिए निशानियाँ दीन की बहुत हैं। अब इसको आप मेरी ज़ात से निकाल देंगे ना, फिर सुनाऊंगी, तो मेरे नाम से ना रखिएगा। सिर्फ आपको ये वक्त, और मैं समझती हूँ कि अल्लाह हालात कैसे पैदा करते हैं ना। इस वीकेंड पे एक दर्स था, किसी भी जगह था, किसी ने रखा, मशवरे से हुआ या नहीं हुआ, काफ़ी हिचपिच हो के, चूँकि वो कह चुके थे ना मैंने बाहर से आना था, इन्होंने कहा कि हमने दूसरों को कह दिया हुआ है, तो काफ़ी मतलब मैंने उसके लिए बदर हुई मैं, लेकिन मैंने कहा कि नहीं अब ये इसका मेरा मामला नहीं रहा, ये नूरुल कुरान और इस्लाम का मामला। मैंने कहा ओके हम मैनेज कर लेंगे, आप करें, मैं उसी दिन आ जाऊँगी, मुझे एक दिन बाद आना था उस दर्स के लिए, आगे आना था, उधर भी सारा रिस्केड्यूल करवाया, नहीं जो भी हालात थे जो भी थका, नहीं अब नहीं होगा। अल्लाह का काम देखिए, सब कुछ करके कि ठीक है हम सुबह जल्दी निकल आएंगे और दर्स में चले जाएंगे, सुबह हम तैयार, सामान पैक गाड़ी में, अबाया पहना, नाश्ता हमारे साथ, हमारा जो खाना था। टिकट किधर है, टिकट किधर है, ट्रेन के टिकट आपको तो पहले से लेने पड़ते हैं, लेकिन हमने उसको सब कर लिया हुआ था सॉर्ट आउट। टिकट किधर है, टिकट किधर है, बाद में क्या पता चला वो वॉश हो गए, पॉकेट में वॉश हो गया टिकट। अब आप वो कौन, किसने किए, इनको निकाल दें, मैंने आपको पहले ही कहा कि इनमें से हम इंसानों को निकाल दें। अब क्या है उसकी बात, क्या तो साले हाथ ढूंढे, वॉशर ड्रायर में से इतना टुकड़ा निकला, बाहर जाके देखा, समझ आ गई कि टिकट धुल गए। और आपने जिन्होंने सफ़र किया, आई लव ट्रेन सफ़र, यानी ट्रेन का सफ़र मुझे इतना पसंद है कि अगर आप मुझे चॉइस देंगे आप यहाँ से गाड़ी में जाएं इनर यूके या ट्रेन में जाएं, तो मैं ट्रेन को पसंद करूंगी। पहले से लिए होते हैं, एक दिन की टिकट आपको 10 पाउंड की मिलती है और उससे अगले ही घंटे वाली टिकट 110 की भी होती है। अब क्या करें, फ़ोन करो उसको, पूछ कर क्या इसका कुछ मिल सकता है, उन्होंने कहा नेवर, नहीं मिलेगा, उससे पूछो से किस्सा, उससे कांच ले लेते हैं, चेक किया। अब आप सोच सकते हैं कि सुबह निकल रहे हैं, 3 बजे के दर्स का टाइम था, सुबह के वक्त में ये सारा क्योस बरपा हुआ है, और इसी में तकरीबन मेरा ख्याल है कि 12 बज गए, उससे पूछो से, और जब जाके चेक करें कोई टिकट ही नहीं है, ट्रेन नहीं है, ट्रेन है तो टिकट नहीं है, और जो क्लोजेस्ट ट्रेन की टिकट मिल रही थी वो शाम की, और वो भी 175 पाउंड की एक टिकट, यानी आम हालात में 20-25 पाउंड का बड़ा अच्छा टिकट मिल जाता है। किस्सा मुख्तसर, टाइम जब हुआ कि मुझे अंदाज़ा हो गया कि अब तो मैं जहाज़ पे भी जाऊंगी तो मैं लंदन नहीं पहुंच सकूंगी, मेरा ख्याल है कि 12:45 थे और 3 बजे का टाइम था दर्स का। आखिर जब मुझे समझ आ गया कि आई कैंट रीच देयर, फिर भी मैं कूल थी, मैंने कहा ये अल्लाह की तरफ से, ये देखिए ये सारी तफसीर आपको इस आयत की दिख रही है कि बाज़ दफ़ा जब हालात का पहले पता चल जाए तो तुम सब फिसल जाओ। खैर ये असल में जो मैं सुनाने लगी हूँ आपको कि ये हालात जो टिकट का होना ये एक बहाना था, मैंने गिव अप किया, मैंने इनको थोड़ी सी मुख्तसर लफ्ज़ों में कहानी सुना दी कि ये चीज़ हो गई है, मैं अब नहीं पहुँच सकती। दूसरी बात है दर्स कैंसिल नहीं होगा, ये तो हमारी रिवायत ही नहीं है कि दर्स कैंसिल हो, मैं हूँ ना हूँ दर्स होगा, आप यहाँ से अरेंज करें कोई जाए और वहाँ पर दर्स करें और मुझे इधर से ले लें, मैं इधर से भी कर, और उस दर्स की बेस पर हमने अपने वो किताबुल जनाइज़ को रिस्केड्यूल किया एक दिन पहले, आप सुन रहे होंगे, रोज वो 11 से एक हो रहा था ना, तो उस दिन हमने अनाउंस किया कि निकाल 3 से आगे होगा। और प्लान क्या था कि उस घर में भी मैयत ही थी, डेथ का मौका था, तो उनको टॉपिक भी यही देना था जाके, और साथ ऑनलाइन पे ले लेंगे। ये हमारी अकलें होती हैं, वल्लाही वल्लाही जब तक सरेंडर नहीं करेंगे अल्लाह के काम के नहीं बनेंगे। अब समझ नहीं आ रहा करें तो क्या करें। खैर अल्लाह इनको जजा दे, ये बीमार भी थी, ये आपसे डील करती है, मैं इनसे करती हूँ। मैंने कहा भाई ये मामला है, मैं नहीं पहुंच सकती, अब क्या करें उस्ताजा। मैंने कहा आप किसी को अरेंज करें। और मजे की बात, सोने पे सुहागा कि वो दर्स भी यहां से दूर था, फैमिली से दूर था। खैर मैंने कहा कि आप किसी को भेजें, साथ उधर जाएं, पूरा अरेंज करें, और आप लोग वहां रेडी रखें, मुझे साथ लें नेट पे, मैं इधर से बात करके साथ कर करा के देर से नेट। इन्होंने हल्का सा कहा, जिन्होंने अरेंज किया वो आप ही में से कोई है, स्टूडेंट ही है। कहने लगी अगर हम उनको ही कोई सीडी दे दें। मैंने कहा नेवर, उनको कौन मानेगा, वो तो खुद घर वाली है। कोई मानता है कि भाई आपने दर्स अरेंज किया आप खुद ही बैठ गई देने? वो होंगी ऑफकोर्स, लेकिन आप में से कोई एक बंदा जाए। मैंने एक दो नाम भी इनको दिए कि मैंने कहा आप देख लें, उसके बाद आप देखिए कि इधर क्या हुआ होगा। ये तो इन लोगों को पता है, वो बीमार है, ये सिख है, उसका मसला, और ये खुद भी सिख थी। अच्छी इत्तफाक देखिए कि एंड इस टाइम के दौरान हमें वहीं जहां मैं थी वहां पता चला कि एक बच्चे की डेथ हो गई है। वो भी हमारी बहुत प्यारी साथी हैं, स्टूडेंट भी हैं, मैं पहले भी एक दो दिन से उनके साथ इन टच थी, उनका बेबी हॉस्पिटल में था। तो एंड उस वक्त बाजी ने मुझे बताया कि वी नीड टू गो फॉर जनाजा। आया वही सुबह की चल रहा था, किसा मुखसर के हम वहां से उठे जोहर पढ़ने, वहां हमने उस बच्चे की माँ को देखा, बहुत जरा बच्चा था तो उसकी डेथ हुई, दुख का वक्त था। उसी दौरान जब हम मस्जिद की तरफ जा रहे थे, मैं मंजर की बता रही हूँ कि अल्लाह भी तो यहाँ मंजर कशी कर रहे हैं ना। इरम का मुझे टेक्स्ट आया, उस्ताजा नो वन इज अवेलेबल, आई एम सिक, फलां सिक, दिस एंड दैट। तो क्या यही सूरत है? इन्होंने जो भी, बल्कि अगर मैं गलत ना हो तो इनका टेक्स्ट ही पढ़ के सुना देती, बड़ा अच्छा इनका टेक्स्ट था इसीलिए सुनाने लगी हूँ कि यानी इन्होंने मुझे यहाँ के हालात बता दिए कि यहाँ ये हालात चल रहे हैं। तो क्या ख्याल है कि फिर यानी जिन्होंने अरेंज किए तो क्या मैं उनको ही सीडी दे दूँ? मैंने उसका जवाब इनको कुछ नहीं दिया। क्या दिया, पढ़ के सुनाती हूँ, शायद मिल जाए जल्दी से। सिर्फ आप देखिए कि ये चीजें सीखने के लिए हम बैठे हैं यहाँ, ये सब किताबें आपके घर में भी हैं अल्लाह के हुक्म से, आप घर में रिकॉर्डिंगों से भी पढ़ लेंगे, लेकिन जो अल्लाह हालात पैदा करके देता है वो बहुत बड़ी चीज होती है। हमारे ऑनलाइन वालों ने सुन लिया कि नहीं सुना? आवाज आई है, लिख के बता दें जो सुन रहे हैं। कहानियां सुनने में तो वैसे भी मजा आता है। यानी इनका मैसेज भी अपने लफ्जों में ये है कि इन्होंने मुझे लिखा कि उस्ताजा इम्पॉसिबल है जाना, और उसके बाद ये है कि मेरे मियाँ भी घर पे नहीं है, मैं भी सिख हूँ। अब एक ही सूरत है कि जिन्होंने अरेंज किया वो खुद सीढ़ी चला दें और नहीं जा सकते। अब आप मेरे ऊपर सोचें तो मैंने क्या लिखा वो भी सुना दे। मैंने उन्हें कहा कि मैं आपको मशवरा नहीं दे सकती, अल्लाह से मशवरा मांगे और वस्तईनु बिस्सब्री वस्सलात, आप अल्लाह से पूछे, मैं आपको कोई गाइडलाइन इसमें नहीं दूंगी, आप जाए ना जाए, मेरा क्या रोब है। लेकिन मैं उस वक्त तक इस सोच में थी कि ठीक है अब ये नहीं जा रहे तो नहीं होगा, नहीं पॉसिबल, क्योंकि मुझे पता है कि जब इरम किसी काम को कह देना कि ये नहीं हो रहा वल्लाही, तो फिर वाकई ये नहीं होने वाला। मेरा दिल इतना दुखी था, मैं अल्लाह के फैसले पर राजी थी, मैं यही कह रही थी कि रदी तो बिल्लाह रब्बन, और अल्लाह तुझे पता है कि मैंने कितनी कोशिश की। और इसमें ये नहीं मसला होता कि दर्स नहीं होगा, वल्लाह वो छोड़े कोई करे, इसमें एक दफा जिन्होंने दर्स रखा है वो आइंदा कहेंगे फलां मौके पे इनकार, और वल्ला ही लोग नाम की भी लाज नहीं रखते, लोग फिर कहेंगे नूरुल कुरान वाले ऐसे, हमारा तो नाम ही, मैं कहती इतना प्यारा है कि इस पे तो नाम बोलते हुए दिल में औज़ बिल्ला पढ़नी चाहिए कि नूर भी है और कुरान, नूर अल्लाह का नाम है और कुरान अल्लाह का है। तो मैंने कहा कि उन्होंने आइंदा कभी दर्स नहीं रखना, जिनका रखा था ये बेटुके लोग हैं, ये एंड टाइम पे खत्म। मैंने कहा देखें कि ये दीन का अब मामला बन गया। खैर मुझे था कि अब ये नहीं जा रहे, लेकिन फिर अल्हम्दुलिल्लाह इनका मैसेज आया कि उस्ताज़ आई एम ऑन माई वे एंड आई एम गोइंग। उस वक्त मुझे ये आयत याद आ रही थी, और इनको नहीं पता था, मुझे पता था कि मैंने ये आयतें आगे जाके पढ़ानी है। मुझे उसी वक्त अल्लाह का इशारा समझ आ गया कि अल्लाह सुबहान तआला ये सिखाना चाह रहा है कि अगर तुम्हें पहले बता दिया जाए, वलौ तवाअत तुम लख तलफ तुम फिल्मियात, मैं अल्लाह से दिल की गहराई से दुआ करूंगी कि उस दिन के दर्स को इन्होंने जिस तरह टैकल किया, अल्लाह इसके बदले में इनकी दुनिया आखरत की सारी तकलीफें दूर करते हैं। इतनी मैंने वहां गाड़ी में बैठे इनको दुआएं दी, हम बिल्कुल मस्जिद के बाहर शायद पहुंच गए थे जनाजे के लिए, कि मैंने कहा कि अल्लाह आज इरम का जाना इसकी दुनिया आखरत की बेहतरियों का बदला हो, इसको वो मिले कि कल क्यामत के दिन हम भी रश करें कि इरम ने उस दिन ये नेकी कर ली। जी आप इधर आ जाए, वो बेचारे परेशान होते हैं ऑनलाइन। देखिए लख तलफ तुम फिल्मी याद, बहुत सफर टास्क बड़े लग, आज आप में से बहुत सारों को ये टास्क मुश्किल लग रहा है, अब 10 बारों के बाद हिम्मत हो सकता है काम हो जाए। लेकिन याद रखिए कि ये मुश्किलें आपको अल्लाह के रास्ते के नुमाइंदे बना रही हैं। जी रम
जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब उस्तादा जी ने मुझे फ़ोन किया था, मेरे ख्याल से सुकत 1:15 हो रहा था और वाकई मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी और काफ़ी दिनों से ही चल रही थी। जब उस्तादा जी ने मुझे कहा तो मैं तबीयत की वजह से इतनी को डाउन थी कि मैंने कहा मैं नहीं जा सकती। और उस्तादा जी ने जो नाम लिया तो वो भी बीमार थे। अब मैं बहुत अपने आप से जद्दोजहद की जंग की, यकीन जाने उस वक़्त कि मैं क्या करूँ। मतलब मैं उस्तादा जी की बात को भी नहीं टाल सकती थी और जा भी नहीं सकती थी। कुछ टाइम मैंने अपने आप के साथ बहुत लड़ाई की, फिर मेरी जिनके घर दर्स था उनसे बात हुई, उन्होंने कहा मैं आपको पिक कर लूँ। उससे मेरे अंदर 1% 2% हिम्मत हुई कि अगर वो मुझे पिक कर रही हैं। मैंने बहुत मुश्किल से अपने आप को तैयार किया। मैंने कहा नहीं, मेरी उस्ताद हैं और वो इतने दूर से हमारे लिए आई हैं और मैंने उनको रिप्रेजेंट करना है और दावा देनी है। आप यकीन जाने मैं सिर्फ इस नीयत से कि नहीं, मैंने अपनी उस्ताद के लिए कि उन्होंने ये बात की है, अपने आप से लड़ते लड़ते मैं तैयार हुई। इतनी देर में मेरी आसपास से बात हुई और सीढ़ियों के मुतालिक बात थी। मैंने उनको बताया इस तरह मैं दर्स में जा रही हूँ। उन्होंने कहा मैं भी चलती हूँ, मेरी बेटियाँ भी। उससे मुझे और हिम्मत मिल गई कि मेरे साथ कोई और भी है। मैं जब उनके घर उनको लेने पहुंची तो पता चला आलिया भी तैयार है। उससे मेरी और हिम्मत बढ़ गई और अल्हम्दुलिल्लाह हम टाइम पे पहुंचे और अल्लाह सुबहाना ताला ने ही सारा काम वहां पर करवाया। उस्तादा जी से मैं फिर भी गाइडेंस ले रही थी कि आप मुझे बताएं कि मैं किस तरह स्टार्ट करूं, क्या करूं, क्योंकि एकदम जाके तो मैं
जो
सीढ़ी
मैंने
नहीं
कहा वो
लगा
भी
सकती थी।
बताएं। एक इधर ही रहे। बड़ी मज़े की बात हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह जब कंफर्म हुआ कि ये जा रही हैं तो अब ये अच्छी माशाल्लाह, आपको पता है कि कितनी अच्छी बच्ची हैं, लेकिन ये यहाँ बैठ के इन्होंने कभी दर्सों नहीं किया ना, तो मुझे कहती है अच्छा उस्ताज़ा मैं वहाँ जाके क्या करूँ। तो मैंने इरम की आदत के मुताबिक मैंने कहा इरम ने जाते ही सारी कहानी खोल देनी है। वो समय उस्ताज़ा को आना था ये, और वो सारे जिनको ना उस्ताज़ा का पता, उस्ताज़ा कौन किधर क्या बला, मैंने कहा इरम थोड़ी देख ली तुम उस्ताज़ा बन जाओ। उनको पता ही कोई नहीं उस्ताज़ा है कौन, बहुत दूर था, पहली दफ़ा हो रहा है। मैंने कहा तुमने वहाँ जाके इशारा भी नहीं देना कि तुम कौन और मैं कौन, हाल पूछना क्या हाल है कैसे, थोड़ी सी बातें करना, क्या बातें करूँ वो भी बताई। फिर मैंने कहा कि उनको बातों में ऐसे कहना कि अच्छा बहुत लगा ये वो करके कहना, फिर मैंने एक अच्छा लेक्चर सुना था, थोड़ा सा मिलके सुनते हैं सारा पूरा, उनको थोड़ा सुना के बीच में बातें करती रहना। वाकई मेरा नहीं ख्याल के लोगों को पता चलेगा एंड पे, जू के घर में एक आधा बंदा मुझे जानता ही था ना, तो वो तो सोच ही रहे होंगे कि उस्ताज़ा ऐसी कि भाई प्यारी कैसे हो गई इतने दिन में। तो फिर मैंने कहा कि एंड पे फिर उनको कह देना कि आना था तो मेरी फोन पे बात कराना, और मेरे हाल इन्होंने ऐसा ही किया, क्योंकि अगर शुरू में जाते ही कह देते हो सॉरी, मैं आपको देखिए हिकमत सिखा रही हूँ आपको, मैं जाते कौन जाए सॉरी मेरा प्लान चेंज हो, अब जो बैठे थे उनका माइंड तो आपने पहले ही डिस्ट्रैक्ट कर, पता नहीं वो आती तो क्या दर्स होता, वो आती तो क्या होता, ये कंपेरिजन नहीं, नो प्रॉब्लम, बात चलने दें, एंड पे मेरा जिक्र कर दें, फिर क्या हुआ अभी आप बता दें।
तो अल्हम्दुलिल्लाह दर्स स्टार्ट किया बातों से ही स्टार्ट किया कि हम इस दुनिया में क्यों आए हैं और ये जो कुरान है हमारे लिए एक मकसद है। अल्लाह सुबहाना तआला ने हमें एक मकसद के लिए इस दुनिया में भेजा है और हमें इस कुरान को समझना है, पढ़ना है। मैंने कहा आज जो चले गए तो अब हमारे पास जो वक्त है हम उसको ज़ाया ना करें। इससे बातें स्टार्ट करके तो मैंने कहा आए चले हम सुनते हैं कि जो मरने वाले हैं, जो चले जाते हैं हमारे प्यारे, तो हमें उनके लिए क्या करना चाहिए। इस बात से हमने फिर दर्स स्टार्ट किया, 1 घंटे का दर्स अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उनसे बात की, क्लास की थोड़ी सी शेयरिंग की, सब बताया कि क्लासेस इस तरह होती हैं। और उसके बाद उस्तादा जी को फ़ोन मिलाया इस सोच के कि उस्तादा जी दुआ करवाएंगी। उस्तादा जी ने सलाम दुआ करके और उस्ताद जी का इरम आप दुआ करवा
तो बाद से उस्ताजा जी इरम भी बन गई हैं, अब आप इनको भी चले आज
अल्लाह
ऐसा
सुभान
करते
अल्लाह
हैं,
ने सब कुछ करवाया अल्हम्दुलिल्लाह।
इस पे आज एक काम करते हैं, आज से आप सब इरम को इरम नहीं कहेंगे, इरम जी कहेंगे, बोले सब, और अगर आपने जी ना कहा तो सजा मिलेगी। आपको तो अल्लाह के नबी के दौर में ऐसे ही टाइटल मिल जाते थे, कुछ करते हैं ना तो टाइटल मिलते हैं। जी आप आसवा जी आप भी कुछ कहें, अब टाइम तो लग रहा है, लेकिन मेरा ख्याल है ये सिचुएशन क्रिएट करके सिखाने वाली बात है।
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस चीज की मैं भी गवाह हूँ कि मैं उधर थी, हालांकि मुझे सारी सिचुएशन का पता था। तो माशाल्लाह जब इरम जी ने शुरू किया तो माशाल्लाह मेरा भी ईमान ताजा हो रहा था, बातों में बड़ा असर था और बड़ा अच्छा हैंडल किया माशाल्लाह इन्होंने। लेक्चर तो उसादा जी का तो माशाल्लाह आप सबको पता ही है, लेकिन इरम ने जो शुरू में और एंड में वो जो दुआ भी करवाई वो भी माशाल्लाह बड़ी अच्छी थी।
और मैं अक्सर सोचती हूँ हम लोग जहाँ भी जो भी रहे काम करते हैं, اب یہ ایمرجنسی تھی نا. اب یہ باتیں یہاں بتانے میں تو بڑی کول کام ہے, لیکن اب پریکٹیکلی دیکھیں سامان لدا نکال, جہاں آپ گئے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی کیوس ہو جاتا ہے, اور یہ اللہ کا حکم ہوتا ہے. تو میں اکثر سوچتی ہوں کہ اللہ اس طرح کے کام کیوں کراتا ہے, کہ شاید دین کے کام کرنے والوں کی زندگی آرام کی زندگی نہیں ہوتی. اسی لیے یاد رکھیے, ہر ایک آپ کے ساتھ صبر بھی نہیں کر سکے گا. آپ آج جن لوگوں کی دعائیں کرتے ہیں, دین اب صراط المستقیم, اللہ کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم, کون ہے وہ لوگ؟ من یطیع اللہ و یطیع الرسول اولئک انعم اللہ من النبیین. سب سے پہلے اللہ نے نبیوں کی زندگی کہی ہے. آپ ماشاء اللہ تھوڑی سی سٹوریز تو پڑھ چکے ہیں نا سورہ اعراف میں. حضرت نوح سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھ لیں, وہ چین والی زندگی نہیں تھی. ایک جملہ میں نے بہت پچھلے سالوں میں لکھا ہے کہ اللہ جن لوگوں سے اپنے کام کراتا ہے نا, وہ پھر روٹین لائف والے لوگ نہیں ہوتے. مرضی سے اٹھے, کپ پکڑا, چائے پی, پھر آپ نہیں چنے جائیں گے. پھر آپ کو جنت ملے گی انشاءاللہ, لیکن اللہ وہ جنت آپ کو کیوں دے؟ ایک بندہ تڑپا رویا, تھرسڈے کو شاید کورس ایک پورا ہوا ہے آن لائن پہ, تو میں نے اس میں صرف ایک چھوٹے سے جملے پہ سورہ زمر کے بات کی تھی, حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. کیا علم والے اور نا علم والے برابر ہیں؟ بھوکا اور پیاسا برابر ہے؟ پیٹ بھرے ہوئے. تو یاد رکھیے, من جتا وجتا, اور اللہ چن رہا ہے, ہم سب کو چنے گا. یہ جنت کے برانڈز تیار ہو رہے ہیں. اور یہ جتنی حوروں کی باتوں پہ لوگ مونچھوں پہ ہاتھ پھیرتے ہیں نا, میں سیریس کہہ رہی ہوں بات, ابھی آپ نہ خوش ہوں کیونکہ ہمارے متعلق تو نہیں, لیکن حوریں آپ مفسرین کی تفسیریں پڑھ کے دیکھیں, وہ کہتے ہیں جنت کی وہ بڑی بڑی چیزیں جس پہ آج لوگ تھوڑا چیو چیو کرتے ہیں, یہ ہیں ہی صرف مجاہدین فی سبیل اللہ کے لیے. عام لوگوں کو نہیں ملیں گے, ان کو اپنی بیوی مل گئی تو بڑی غنیمت ہے. ٹھیک ہے, تو درجے ہیں, جیسے دنیا کے برانڈز ہیں نا جنت کے برانڈز ہیں. تو یہاں کی مشکلیں وہاں کی آسانی ہیں, دو میں سے ایک لے لو. بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کبھی کسی دل میں دو امن اور دو خوف اکٹھے نہیں رکھے گا. جو دنیا میں امن, چین, ریلیکسڈ, نیچرل روٹین لائف پسند کرے گا, دیکھیں نماز روزے کے ساتھ بڑی اچھی روٹین چلتی ہے, وہ اللہ کی. مت سوچئے کہ جو لوگ اللہ کے رستوں میں محنت کے لیے جان نہیں لگا رہے وہ کوئی گناہ گار ہیں, نہیں, وہ بہت اچھی روٹین میں ہے, ٹائم سیٹل ڈاؤن ہے. فجر کا بھی وقت کبھی نہیں بدلتا, آپ کو پہلے سے بتایا, ایک سال بعد کا بھی دیکھ لیں. دین کے کاموں میں ایمرجنسیز, حالات بگاڑ, اور یہ جنگوں کا حال ہے. ایک فوجی تیار ہو اور کہہ دے بس مجھے جنگ کے وقت نہ بلانا, تو واٹ ڈز اٹ مین؟ آپ کو تیار کس لیے کر رہے ہیں ہم؟ بھائی دشمن آئے گا مجھے نہ بلانا کیونکہ اس وقت میرے سونے کا ٹائم ہوتا ہے, حملہ ہو جائے گا تو وہ خبر نہ دینا کیونکہ وہ میرے بات کا ٹائم ہوتا ہے. کین یو بلیو؟ تو آپ آج بھی اپنے ذہن کو کھول لیں کہ آپ کو اللہ نے جو چنا ہے نا, واللہ ہی آپ جیسے جتنے ہزاروں چنے ہوئے, یہ مشکلات کے لیے تیار ہو رہے ہیں کیونکہ یہ اللہ کا گروہ تیار ہو رہا ہے. سورہ توبہ تم اس نہیں کری, اور کل کا سبق تو ماشاء اللہ آیتیں بولتی ہیں قرآن کی کہ کون کہاں جائے گا. میں کہہ سکتی ہوں کہ کل کے سبق کے بعد آپ جنت میں اپنا مقام خود دیکھ سکتے ہیں, میں بھی دیکھ سکتی ہوں, اور جہنم کے بھی, اور درجے اور جنت کے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر چیزیں پہلے سے سیٹل ڈاؤن ہو تو ضروری نہیں. بعض جب آپ کو ایک تانا ملے گا, پہلے سے کیوں نہیں ارینج کیا؟ اب آپ بتائیں, یہ جو میں نے کہانی سنائی اس میں پہلے سے ارینج کرنے یا نہ کرنے والی کوئی کہانی تھی؟ میں نے ایسا بھی دیکھا, ایک دوسری بھی نشانی جو مجھے ویک میں ملی, اتنی بہترین تیاریاں کی ہوئی کسی نے اپنے پروگرام کی, لیکن آپ دیکھیے کہ عین وقت پہ کچھ ایسے اللہ کی طرف سے ہنگامی حالات اور آ جاتے ہیں ٹیسٹ, کہ وہ جو آپ کی نعمت بھی ہوتی ہیں آپ نہیں فائدہ اٹھا سکتے. تو اللہ ہمیں یہ دکھاتا ہے تم کچھ نہیں ہو. میں نے تو یہی سیکھا اس پورے ویک میں, دو تین ایسی چیزیں سامنے آئیں کہ مجھے سمجھ آ گئی کہ میں کچھ نہیں ہوں. ایاک نعبد وایاک نستعین, بندگی, تم کچھ نہیں ہو, پگھل جاؤ, ٹوٹ جاؤ اگر تم اللہ کے رستے کے کچھ کام کرنا چاہتے ہو. ورنہ یاد رکھیے کہ آج مرے کل دوسرا دن, کون یاد کرے گا ہمیں؟ آپ سوچیں ایک بندہ مرتا ہے, کون یاد کرتا ہے؟ بچے اور ماں باپ. اگر ماں باپ کی زندگی میں مر جائیں پھر آپ کو زیادہ یاد کریں گے لوگ. اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو کہ کوئی بچہ اپنے ماں باپ کی زندگی میں مرے. جملہ لکھ لیں میرے سے, غور سے لکھ لیں, اگر ہم اپنے ماں باپ کی زندگی میں مر گئے تو ہمیں زیادہ دعائیں ملیں گی, زیادہ لوگ روئیں گے. ضروری نہیں کہ ہمارے بچے ہمیں ویسے یاد کریں جیسے ماں باپ کرتے ہیں. بچے کچھ دن کے بعد صبر میں آ جائیں گے. اگر ہم نے ان کو اللہ کا نہیں بنایا یا اللہ کے کاموں کے رستے نہیں دکھائے نا, تو آج مرے کل کہیں گے اٹس اوکے, صبر کر لیتے ہیں, اٹس فائن. میں اکثر نوٹ کرتی ہوں, پہلے دور میں شادیاں ہوتی تھیں, بچے بچیاں اتنا روتے تھے. آج بھی ایسے کچھ مشرقی ماحول آپ کو ملتے ہیں, بچیاں کتنا روتی ہیں شادی سے پہلے. آپ نے کبھی نوٹ کیا کہ آج بچیاں اتنا کیوں نہیں روتی ہیں, اتنا فیل نہیں کرتی ہیں؟ اٹس اوکے. تو جب وہ خود گھر چھوڑ کے گئیں تو نہیں روئیں, تو اگر ماں دنیا سے چلی گئی تو اٹس اوکے, اللہ کا حکم تھا. بعض دفعہ میت والے گھر میں یعنی اس کے کلوز آؤٹ ایک دو چار دن کے بعد دیکھے تو جو آپ سوچ کے جاتے ہیں ہاں ان کے بچیاں بچے تھے تو وہ بڑے پیسفل ہوتے ہیں لیکن بوڑھے ماں باپ رو رہے ہوتے ہیں. تو ایک زندگی یہ کہ میں مروں تو میرے پیچھے دو چار ہیں میرے بچے. اور شوہر کے لیے کیا آتا ہے آپ کو پتا؟ ایک کلچر ہے ہمارے کلوز لوگوں میں تو وہ کہتے ہیں کہ بیوی کی موت شوہر کے لیے کونی کی چوٹ ہوتی ہے. کونی کی جب لگتی ہے نا ایک دم بہت لگتی ہے, ایسے لگتا ہے جان نکل جائے گی اور ود ان فیو سیکنڈ ختم. کہ شوہر کے لیے بس اتنا ہے کہ ایک دم جھٹکا پڑتا ہے اور اگلے لمحے سہل جاتا ہے. شوہر کا کیا بیچارے کا اور بچے اپنی زندگی میں. لیکن ایک وہ موت ہے کہ جب آپ مریں تو زمین بھی روئے اور آسمان بھی روئے. قرآن میں آپ پڑھیں گے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جب آل فرعون کا ہی تذکرہ ہے کہ جب وہ مرے فما بقت علیہم پس نہ روئے ان پر آسمان اور نہ زمین. تو دعا کیجئے کہ جب ہماری موت ہو تو زمین کے وہ ٹکڑے روئیں جہاں سے نیکیاں ہم کرتے تھے اور وہ آسمان کے ٹکڑے روئیں جہاں سے ہماری نیکیاں جاتی تھیں اور جہاں سے ہمارے لیے رزق آتا تھا. تو آج زندگی میں سکون لے کے بیٹھ جانا بڑا آسان ہے. آرام سے میں میرا گھر میری جنت. جنت پھر بھی کوئی نہیں بنتی. جنت تب بنے گی جب ہم اپنے اور اپنی اولادوں کے لیے جنتوں میں گھر تیار کریں گے.